शक्तिमान।
हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां,
नमस्कार, ओम शांति। रिंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि ये युग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है। साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी सुख सुविधाएं, आराम, बहुत सारे कंफर्ट्स दिए हैं। लेकिन इस एडवांसमेंट के दौर में कहीं ना कहीं हमारी मानसिक शांति बहुत छिन चुकी है, जिसके लिए हम बहुत सारे यत्न भी करते हैं, जतन भी करते हैं कि कैसे मेरी सुख शांति मेरे जीवन में वापस लौट आए। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भले हम सुख सुविधाओं का यूज तो करें, लेकिन मानसिक शांति डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, श्री मोहन सिंगल जी। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद।
तो जैसे कि हम देखते हैं कि आज का जो युग है वो साइंस टेक्नोलॉजी का युग है। साइंस ने हम सभी को बहुत सारे कंफर्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइड बाय साइड हम ये भी देखते हैं कि जितना कंफर्ट्स हमको दिया है साइंस ने, मनुष्यों का जो पीस ऑफ माइंड है वो उतना ही खत्म होता जा रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना ये बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, इधर से पीस बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। व्हाट आर द रीजंस, क्या कारण हो सकता है इसके?
यह वास्तव में बिल्कुल सत्य है जो आप कह रही हैं। एक्चुअली बाहर के एडवांसमेंट के साथ साथ अगर अंदर का भी एडवांसमेंट मैच करता है तो व्यक्ति वास्तविक सुख शांति की अनुभूति करता है। तो बाहर का एडवांसमेंट तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो अंदर की मानसिक शांति आदि इसलिए कम हो रही है कि व्यक्ति भौतिकवादी अधिक होता जा रहा है, और जो आंतरिक शांति और शक्ति के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनसे वह दूर हो रहा है। बड़ा अच्छा किसी ने लाइफ को डिफाइन किया है, 4-letter word LIFE, कि इसके दो पहलू हैं। LI डिनोट्स लुक इंटरनली, FE डिनोट्स फॉरवर्ड एक्सटर्नली। तो फॉरवर्ड एक्सटर्नली तो हम कर रहे हैं, लेकिन लुक इंटरनली वो हम नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हो क्या रहा है कि हमारे आंतरिक शक्ति उसका कमी होती जा रही है उसके अंदर, और इसलिए वो मैच नहीं कर रहा है। तो आदमी को ये महसूसता होती है देयर इज समथिंग वैक्यूम। और लाइफ को ऐसे भी किसी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है LIFE की, देयर आर 4 stages। तो L डिनोटिंग लर्निंग, देन इंडलजेंस, देन फाइंडिंग एंड एवॉल्विंग। तो लर्निंग में हम सब लर्न करते हैं अप टू द एज ऑफ 20-25 इन रेगुलर वे, तो वो ठीक रहता है। देन इंडलजेंस, जो पढ़ाई की है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, तो इंडल्ज भी होते हैं उसमें। तो यहां तक तो सब लगभग थोड़ा ठीक चलता है। उसके बाद व्यक्ति को महसूस होता है कि मैंने पैसा भी कमाया, फैमिली भी है, मकान मोटर सब कुछ है, लेकिन अंदर की शांति जैसा आप बता रहे हैं उसमें कमी होती जा रही है, स्ट्रेस टेंशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो फाइंडिंग स्टेट ऑफ फाइंडिंग की स्टेज, वो व्यक्ति को महसूस होता है देयर इज समथिंग मिसिंग। और इसीलिए जब वो फाइंडिंग इस राह पर थोड़ा चलता है तो फिर एवॉल्विंग, तब उसे महसूस होता है कि क्या क्या मुझे एवॉल्व करना है, और तब जो रियली ऑनेस्टली अगर इसमें कोई स्टेप्स लेते हैं तो उन्हें शांति शक्ति की अनुभूति होती है।
लेकिन जैसे हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो कंट्रीज हैं, हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हम डेवलप्ड इसलिए बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारा लग्जरीज है, मटेरियल्स हैं, बहुत सारी इसने कंफर्ट जनरेट कर ली, और डेवलपिंग उनको बोलते हैं जो अभी तक उस लेवल तक नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज है, कितना कुछ उन्होंने अचीवमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी वहां का जो लाइफस्टाइल है वही, जैसे अभी बात कर रहे थे हम, पीस। पीस नहीं है, तो क्या एक्चुअली में उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाएगा?
फिजिकल सेंस में तो डेवलप्ड बोला ही जाएगा
जी,
लेकिन जैसे आपको बताया कि फिजिकल और मटेरियल इज नॉट एवरीथिंग, तो इसके साथ साथ असली चीज है आंतरिक सुख और शांति। तो बाहर की डेवलपमेंट भी इसलिए है कि मनुष्य को मेंटल पीस, हैप्पीनेस और एक ब्लिसफुल लाइफ का अनुभव हो
जी।
तो बाहर का अगर ये है लेकिन अंदर का ये अनुभव नहीं है, देन इन होलिस्टिक सेंस दे आर नॉट डेवलप्ड। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता है वो है होलिस्टिक हैप्पीनेस की, और इसीलिए होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग जब होता है तो उसमें वास्तविक शांति और सुख होता है जैसा आपने बताया
जी।
तो मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे भी जाने का काफी सौभाग्य मिला एडवांस कंट्री में, यूएस में, यूके, रशिया आदि, तो मैंने देखा ये सब डेवलपमेंट तो है लेकिन फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ उनका और स्पिरिचुअल लाइफ, इमोशनल लाइफ वो उतना डेवलप्ड इसीलिए नहीं है, उसमें वो उतनी शांति सुख की अनुभूति नहीं करते
जी।
तो हम तो समझते हैं आवश्यकता इस बात की है कि बाहर की डेवलपमेंट भी हो, वो भी जरूरी है,
इंटरनल डेवलपमेंट,
लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट जब तक नहीं है तो बाहर का वो अनुभव पूरा लाइफ में नहीं कर सकते।
तो इंटरनल डेवलपमेंट का क्या टेक्नोलॉजीज है?
इट इज सटल टेक्नोलॉजी, जैसे बाहर के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बाहर की डेवलपमेंट सबके लिए, वी ऑल नो अबाउट इट, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट में, व्हाट आई मीन बाय इंटरनल, इंटरनल मींस जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आंतरिक शक्ति है, और उसके अंदर भी कमी इसलिए आ गई है कि आज इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का युग है, तो बाहर की इन्फॉर्मेशन तो बहुत है
बिल्कुल,
लेकिन वी आर नॉट एबल, हम इस अभी तक वो नहीं कर पाए कि इस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम नॉलेज में और फिर विजडम में कन्वर्ट करें। थ्योरेटिकली वी नो सिगरेट पैक होता है, लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस, सो इन्फॉर्मेशन इज देयर, नॉलेज भी है
बिल्कुल,
लेकिन विजडम ये हम चाहते हुए भी अपने को रोक नहीं पाते और हमारी कमजोरियों के वशीभूत होके स्मोकिंग कर लेते हैं,
पढ़ करके भी हम वो चीज कर रहे हैं,
कर रहे हैं, नोइंग वेरी वेल कि लॉन्ग टर्म में इससे नुकसान होने वाला है और होता भी है। तो बिल्कुल ये जैसे शास्त्रों में कहा है, दुर्योधन की स्थिति है हम सभी की। दुर्योधन भी कहता था मैं जानता हूं सत्य क्या है लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर सकता, मैं जानता हूं असत्य क्या है, गलत क्या है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो वही है कि हम जानते हैं थ्योरेटिकली कई सारी चीजें, क्रोध करना बड़ा हानिकारक है, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जो आदमी के डिसीजन मेकिंग पावर को क्लाउडी कर देते हैं आदि आदि, लेकिन फिर भी कह देते हैं क्या करें, मैं चाहता तो नहीं गुस्सा करना लेकिन आ जाता है
जी,
यानी कि मेरा सेल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि सेल्फ की भी जितनी डेवलपमेंट होगी उतना बाहर की डेवलपमेंट से जब ये मैच करेगा देन वी कैन एंजॉय द रियल लाइफ।
बल्कि इनफैक्ट मैंने खुद देखा है, बहुत सारे साइंटिस्ट से मैं मिली भी हूँ और इंजीनियर्स जो इतने कम्फर्ट्स दे रहे हैं, इतने सारी चीजें बना रहे हैं हम लोगों के लिए, और वो खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रेन में होते हैं।
राइट,
वो कम्फर्ट बना रहे हैं कि दूसरों को कैसे आराम मिले लेकिन वो खुद ही आराम की स्थिति में नहीं है।
बिल्कुल सही बात है।
तो हाउ टू हैंडल, मतलब वो लोग जो हमारे कहीं ना कहीं एडवांसमेंट का आधार है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो अपनी लाइफ में ऐसा अडॉप्शन करें जो मेंटली स्टेबल रहे, वो खुद कंफर्ट रहे।
राइट, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। साइंटिस्ट या इंजीनियर ये तो ट्रेड है या प्रोफेशन है जो उन्होंने पर्टिकुलर मे बी आफ्टर 25 इयर्स ऑफ लाइफ 30 अडॉप्ट किया, तो इस कारण से ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो ह्यूमन वीकनेसेस है उससे तो वो भी सफर कर रहे हैं। तो इसीलिए इस विंग का एक साइंटिस्ट इंजीनियर विंग बनाई है ब्रह्मा कुमारीज ने, उसका एक लक्ष्य ये भी है कि जितने भी वैज्ञानिक, इंजीनियर, अभियंता, आर्किटेक्ट आदि टेक्निकल लोग हैं
जी,
उनके जीवन में से तनाव की उन्हें मुक्ति दिलाना और साथ ही साथ ऐसी लाइफ वो लीड कर सके जिस जीवन में शांति और शक्ति का वो उन्हें एहसास हो। तो एक लक्ष्य यही है कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंटिस्ट तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी बने।
जैसे कि आपने अभी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात की है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। अक्सर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत अलग अलग ले लेते हैं। साइंस अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है, लेकिन आज वो टाइम आ गया है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को क्लब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो ऐसा क्यों माना जा रहा है जबकि साइंटिफिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल अलग मानते हैं, तो क्यों ऐसी बातें आजकल उठने लगी हैं कि दोनों में जो है ज्वाइंट चाहिए?
हकीकत में तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो साइड हैं. एक साइड विज्ञान, एक साइड आध्यात्मिकता. और दोनों ही होना आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट. इस बात को ऐसे समझा जा सकता है एक अंधे और लंगड़े की कहानी से, है ना. तो आइंस्टीन ने, फादर ऑफ द मॉडर्न साइंस, उसने बहुत अच्छा कहा था कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम एंड स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज ब्लाइंड. वैज्ञानिक बिना लॉजिक के अगर वो है तो वो अंधी है,
ब्लाइंड.
इसीलिए अंधविश्वास, विश्वास अच्छा है लेकिन अंधविश्वास खराब. इसी तरह विज्ञान भी, दैट इज अनदर साइड, कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज लेम. अच्छा है विज्ञान, बहुत अच्छा है, उसने तो सारी भौतिक सुविधाएं दी,
बिल्कुल,
लेकिन वो भी एक लंगड़ा है. तो दोनों का लक्ष्य तो एक ही है कि मनुष्य के जीवन में शांति, धन दौलत, आनंद, शक्ति सब लाए
जी.
दोनों का लक्ष्य, लेकिन दोनों इंडिविजुअली एक्चुअली एक्सट्रीम साइड में चले गए हैं. आज साइंस के भी इतने सारे बाई प्रोडक्ट हैं जिसका आज हम सब देख रहे हैं कि विज्ञान ने उन्नति तो बहुत की है, डेवलपमेंट, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब उसी के साइड इफेक्ट है.
तभी कहते हैं कि आदमी ने जितनी एडवांसमेंट की है उतना अपना विनाश भी वो लेकर आ रहा है.
वेरी राइट. तो इसी तरीके से आध्यात्मिकता ने भी मनुष्य को शांति ये दी है, लेकिन वो आध्यात्मिकता या धर्म मनुष्य को धर्मांध बना दिया है. और धर्म के नाम पर जितने युद्ध अभी तक हुए उतने शायद किसी रीति से नहीं हुए हैं. तो दोनों अगर एक्सट्रीम है तो दोनों अपने अपने वे में नहीं स्थापन कर सकते एक बेटर सोसाइटी जो फुल ऑफ मतलब पीस एंड हैप्पीनेस हो. तो आवश्यकता ये अंधे और लंगड़े के ये दोनों को एक दूसरे कंप्लीमेंट करने की. और वही कहानी में जैसे आता है कि भाई अंधा वैसे तो ताकतवर है लेकिन लंगड़े को उसने जब कंधे पर बैठा लिया तो लंगड़ा जो है रास्ता बताता गया, अंधा तेजी से चलता गया और दोनों ने एक नए समाज की स्थापना कर ली.
बिल्कुल.
तो आज आवश्यकता यही है कि दोनों आवश्यक है लेकिन प्रोवाइडेड दे बोथ मैच, दे बोथ मीट. और दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो बहुत एक ऐसे साम्राज्य, एक ऐसे समाज की स्थापना हो जाएगी जो हम सबका सपनों का राम राज्य या गांधी बापू के सपनों का भारत और विश्व.
हम साइंस की अगर बात कर रहे हैं उसमें आज जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में है, चाहे भारत के कोई भी है, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं और ऐसे मिसाइल्स भी बन चुके हैं और ऐसी ऐसी चीजें बन चुकी हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी का शायद विनाश कर दे, ऐसी चीजें बन चुकी हैं.
बिल्कुल.
और दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि दुनिया में पीस होना चाहिए. आप जो देश हैं वो सब में हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेशन होनी चाहिए. और एक तरफ से जो मिसाइल्स बन रही हैं, ये वेपन्स बन रहे हैं, ये इस वजह से बनते हैं कि एक दूसरे पर कहीं अटैक हो जाए. एक तरफ तो हम ये चीजें भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सभी को बुलाते हैं कि पीस हो जाए. कंस्ट्रक्शन एंड साइड बाय डिस्ट्रक्शन. आप क्या कहेंगे कि आने वाला समय फिर क्या होगा?
अगर देखा जाए, इसकी डेप्थ में जाया जाए तो इसलिए ये वेपन वगैरह बन रहे हैं, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी.
बिल्कुल.
है एक दूसरे पर विश्वास नहीं है. फिर ये सारी बातें जो ये आंतरिक इंटरनल कॉन्शियसनेस से संबंधित है, इस कारण से वो भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. सब जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा. अगर न्यूक्लियर वार हो गई तो नाइदर द विक्टर विल बी देयर नॉर द पर्सन हु इज डिफीटेड.
बिल्कुल.
इसीलिए किसी का सर्वाइवल इज एट द स्टेक. तो वो भी है और दूसरी तरफ जैसा आपने बताया कॉन्फ्रेंस और ये सब मीट कर रहे हैं. तो आवश्यकता इस बात की है कि दोनों के बीच में जो एक हारमनी नहीं रही है, डिसहारमनी की फीलिंग हो गई है, उसको किसी भी तरह हम मिटाएं. हमें इस समय जब आपने हारमनी की बात की ना, हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की फॉर्मर चीफ दादी जी की याद आ गई
जी.
दादी प्रकाशमणि जी, वो इस शब्द को इस अर्थ में लेते थे कि हारमनी तब स्थापित होगी जब आप हार मानी। होता क्या है, दो साइड होते हैं, दोनों समझते हैं आई एम राइट
और
एक दूसरे झुकते नहीं है। अगर एक कह दे हार मान ली, ओके यू आर राइट,
तो एक हार गया एक जीत गया।
हाँ, एटलीस्ट एक उससे क्या होगा, एक ग्राउंड बन जाएगा। जब एक हार मान लेगा कहने के लिए, दूसरा भी कहेगा अच्छा तुम अपनी बात बोलो, एक डायलॉग स्थापन हो जाएगा। तो ये तो खैर इसका इंटरप्रिटेशन शब्द का है, लेकिन एक्चुअली हारमनी जो है ना, ये चार लेवल पर एग्जिस्ट करती है, जैसा आपने हारमनी का बताया। एंड हारमनी एट इनर लेवल ह्यूमन बींग, हारमनी एट द सोसाइटी, एक हारमनी अपने लेवल पर, एक हारमनी मनुष्य जाति के साथ, इस पशु पक्षी जीव जंतुओं के साथ, और एक नेचर के साथ।
जी,
तो हम नेचर की बात या सोसाइटी की तो हारमनी की बात कह रहे हैं, लेकिन असली बात है द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज इन द इंटरनल हारमनी, हारमनी बिटवीन अवर हेड हार्ट एंड हैंड। तो सबसे पहली कैजुअलिटी ये हो गई, हारमनी बिटवीन अवर हेड एंड हार्ट, और उन दोनों में ही हारमनी नहीं है। दिमाग एक बात बोलता है, दिल दूसरी बात बोलता है, एक कंफ्लिक्ट हो जाता है। हम सबका अनुभव है जीवन में, अक्सर करके ये कंफ्लिक्ट चलता रहता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले अपनी इनर हारमनी अगर स्थापन करेंगे ना, उससे क्या होगा, हमारे फैमिली में
हारमनी
होगी, फैमिली के साथ, सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर और विश्व में भी हारमनी होगी। तो हम रियल अर्थों में एक दूसरे से मतलब डायलॉग कर सकेंगे।
लेकिन हम देखते हैं जैसे नेचर है, नेचर की आपने बात की, नेचर को कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। हम इसके लिए भी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि नेचर को कैसे बचाया जाए।
बिल्कुल सही बात।
तो अभी ये हारमनी फिर कैसे हो, अभी तो हम देखते हैं हारमनी तो बहुत ज्यादा दूर हो चुकी है, वो है ही नहीं। कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो नेचर के प्रति बड़ा सचेत है, उनको बहुत एक इंटरनल भावना है कि हमारा जो एनवायरमेंट है बचना चाहिए, लेकिन बहुत मेजर रेशियो ऐसा है जो नेग्लेक्ट करता है इस चीज को कि हमें अपने से मतलब है, नेचर क्या है वो कुछ नहीं है। तो क्या हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए कि हम नेचर में तालमेल हमारा अच्छा हो।
वास्तव में ना, ये आपके प्रश्न में ही उत्तर एक तरीके से समाया हुआ है, क्योंकि नेचर शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो नेचर, ये पांच तत्व, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और जिसकी हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन उसका काफी हो गया है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और दूसरा नेचर का अर्थ है ह्यूमन नेचर, हमारा स्वभाव।
बिल्कुल।
और दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। तो जैसा ह्यूमन नेचर होती है अकॉर्डिंगली बाहर की नेचर एंड वाइस वर्सा। तो आज बाहर की नेचर भी ना, वो क्यों इतनी ज्यादा वायलेंट हो गई है कि उसका कनेक्शन इंटरनल नेचर के साथ है। इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा भी जमाना था भाई तानसेन वगैरह ये हुआ करते थे, इनकी नेचर अपने उससे ही वो बाहर की नेचर को काफी हद तक कई बार कंट्रोल, ऐसा राग निकालते थे दीपक राग की, दीप जल जाते थे दीपक, मल्हार राग निकाला तो बारिश
आती थी।
कहने का मतलब कि मनुष्य के हाथ में थी बाहर की प्रकृति, आज बाहर की प्रकृति के हाथ में मनुष्य आ गया,
आउट ऑफ कंट्रोल है,
आउट ऑफ कंट्रोल है। यस, तो इस कारण से ये मुख्य कारण उसका है ह्यूमन नेचर की। बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि नेचर जैसे पशु पक्षी जीव जंतु सब है ना, तो पेड़ पौधे जो हैं दे आर द यंगेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा कुटुंब है। तो मोस्टली तो हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी जो है मनुष्य मनुष्य के लिए भाई भाई कह देते हैं, कुटुंब है परिवार, हिंदू चीनी भाई भाई या कोई भी दूसरे अलग अलग देश वाले, लेकिन इससे तात्पर्य ये है कि मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु, क्योंकि वसुधा के तो वो भी अंग है ना। तो इसके लिए बड़ा अच्छा आया कि पृथ्वी में जब पहले पौधा उगता है ना, तो वो जो है दे आर द यंगेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली। क्यों? क्योंकि मनुष्य का भी बच्चा जब होता है तो शुरू में कुछ दिन महीने तक माँ के साथ ही रहता है, माँ की छाती से ही लगा रहता है, वही संसार है। तो ऐसे ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये दे आर द यंगेस्ट फैमिली मेंबर ऑफ अवर फैमिली, क्योंकि ये धरती माता के साथ लगे रहते हैं, यंगेस्ट मेंबर, जैसे मनुष्य का बच्चा। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो दो पैर दो हाथ से जैसे चलना सीखता है, तो ये जो पशु है ना चौपाय, दे आर द सेकेंड यंगेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली। और उसके बाद जब बड़ा होता है तो दो टांग से चलता है। तो वी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हम जो है मनुष्य जाति जो है ये यंग एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस वसुधैव कुटुंब और पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधे हमारी फैमिली के ही सदस्य हैं, लेकिन चूंकि हमने उनको एक्सप्लॉइट किया इस कारण से वसुधैव कुटुंबकम तो नहीं रहा, उन्हीं का हनन शुरू कर दिया। इसीलिए नेचर जो है ना वो और ह्यूमन नेचर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो आज वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम वास्तविक स्थापना करना चाहते हैं नेचर के प्रति, जो आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज, वो ये जब पेड़ पौधों को भी पशु पक्षी इकोलॉजिकल साइकिल के ये बड़े इम्पोर्टेंट अंग है, पार्ट है, इन सबको हम एक परिवार की तरह रखेंगे ना तो अपने आप इकोलॉजिकल साइकिल भी ठीक हो जाएगी, बाहर की नेचर भी और एक समृद्ध संसार की स्थापना।
बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि हमारा प्रकृति के साथ एक फैमिली की तरह रिलेशन होना चाहिए। तो वो फैमिली के रिलेशनशिप से जब हम उसको देखेंगे तो हमारी ह्यूमन नेचर, इनर नेचर जो आपने बात की वो चेंज हो जाएगी। फैमिली सिस्टम की तो आपने बात बताई, लेकिन साइड बाय साइड जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको जो इंसान है ऐसा यूटिलाइज कर रहा है, ऐसा यूटिलाइज कर रहा है कि वो रिसोर्सेज कम होते जा रही है। तो अभी हमारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उन पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रिवेंशन ऑफ नेचर के बारे में सोचें? क्या उनको ऐसे अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिए?
मैं तो ये कहूंगा केवल साइंटिस्ट इंजीनियर ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को ही अपने एटीट्यूड में और इन सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। और एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखा जाए तो मुझे याद आ रहा है सबसे पहले 1973 में पहली स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अर्थ समिट, और तब ध्यान लोगों का ध्यान खिंचवाने के लिए, तब एनवायरनमेंट प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी नेचर की, शुरू ही हुई थी और लोगों ने रियलाइज करना ही थोड़ा शुरू किया था, तो उसको अटेंड कर रहा कुछ लोगों ने, उनमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी, और उस समय उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि नॉट ओनली द एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन, ये ही पॉल्यूशन नहीं है, सबसे बड़ा पॉल्यूशन पॉवर्टी इज द वर्स्ट पॉल्यूशन। क्योंकि जब गरीबी होती है तो गरीबी के कारण मनुष्य फिर अपना जंगल काटता है और कई बातें, और इस कारण से नेचुरल डिग्रेडेशन जो होता है उसका एनवायरमेंट का वो होता है। तो उस समय फिर भी थोड़ी सी जागृति शुरू हुई, लेकिन बाई 1992 केवल 20 वर्ष के अंदर ही, और जब 20 वर्ष बाद कॉन्फ्रेंस हुई ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में, उस समय मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट्स, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स किंग क्वीन आदि, एंड मोर देन 500 एनजीओस, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 35,000 डेलीगेट्स की ये कॉन्फ्रेंस थी, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्थ। तो इससे जाहिर होता है कि लोगों को तब तक डिग्रेडेशन का और नेचुरल इसका बहुत आभास हो गया था कि हम कैसे विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए उस कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड कॉइन किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो लेकिन इतना करें कि सस्टेन कर सके, उसे एक बैलेंस हो। अभी तक हम अंधाधुंध डेवलपमेंट करते रहे और उस डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काटे, पेड़ काटे, बहुत सारे दोहन किया प्रकृति का। तो इसलिए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियल सेंस में होगा तो हम इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकेंगे और फिर प्रकृति को उसी रूप में ला सकेंगे जिस ने हमारे फोर फादर ने जिस रूप में प्रकृति को हमें सौंपा था। तो आज आवश्यकता भी है हम अपने आने वाली जनरेशन को उसी रूप में इस प्रकृति को सौंपें जिस रूप में ये हमें मिली थी हमारे फोर फादर।
जी, तो बहुत अच्छी चर्चा रही हमारी और आपने बहुत गहराई से भी बताया कि क्या वो कारण रहे और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे यदि इंसान अपने इनर नेचर को ठीक कर ले तो बाहरी जो नेचर है उसके साथ उसका रिलेशन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और जिन चीजों की वो परवाह नहीं करता तो वो शायद उस भाव से परवाह करने लगे कि मैं, ये जो नेचर है ये मेरी एक फैमिली की तरह है, और कहीं ना कहीं मेरी जो वीकनेस है यदि मैं उसको रिमूव कर लूं तो ये जो हमारा आपस का जो बहुत गहरा रिश्ता है प्रकृति और पुरुष का, ये सुधर भी जाएगा और जो दुनिया जिसकी हम कल्पना करते हैं कि राम राज्य हो तो वो आने में देरी नहीं लगेगी। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।